ਗਾਨ ਮੈਂ ਬੇਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਨ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਪਰਮਾਗਮ ਕੀ ਛੇਤਰ ਸੀ ਬੁਨਿਆ ਸੀ ਤੱਕ ਗਾਥਾ ਚੱਲੀ, ਚਾਰ ਗਾਥਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਅਪਨ ਨੇ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਥੀ ਔਰ ਉਨਮੇਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਜੀਵ ਪਰਦ੍ਰਵ ਕੇ ਪ੍ਰਣਮਨ ਕਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਪੁਦਗਲ ਵੀ ਪਰਦ੍ਰਵ ਕੇ ਪ੍ਰਣਮਨ ਕਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਕੋ ਐਸਾ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਤੋਂ ਪਰਦ੍ਰਵ ਕਾ ਕਰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਕਾਮ ਮੇਂ ਕਿਉਂ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਵੇ ਤੋ ਕਰੇਂਗੇ। ਉਨਕੋ ਸਮਝਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾ ਕਿ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਵੀ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਪੁਦਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਕਰ ਹੀ ਸਕਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋ ਬਾਤੇ ਦੋਨੋ ਤਰਫ ਸੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਣਤਾ ਹੁਆ ਵੀ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤਾ ਹੁਆ ਵੀ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਂਗੇ ਤੋ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਰਹੇਂਗੇ, ਉਹ ਜਾਣੇਂਗੇ ਤੋ ਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਏਂਗੇ, ਐਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਅੱਛਾ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗਤ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਂਗੇ ਜੋ ਆਪਸੇ ਕਹੇਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਹਮ ਤੋ ਕੁਛ ਸਮਝਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਬ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਤੋ ਰਾਤਰੀ ਮੈਂ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਆਲੂ ਜਮੀ ਕਰਨ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਛਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਤੋ ਸਭ ਸਮਝਤੇ ਹੋ, ਆਪ ਤੋ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਆਪ ਤੋ ਪੰਡਿਤ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਆਪ ਤੋ 5 ਸਾਲ ਪੜੇ ਹੋ ਜੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਕਰਤੇ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਜਿਨਨੇ ਸਮਝਾ ਹੈ ਵੇ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਨਕੀ ਤੋ ਵਿਚਾਰੋ ਕੀ ਕਿਆ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਵੇ ਸਮਝਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਨਕੀ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹਮ ਮਾਨਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਕਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ। ਹਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਈਆ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਤੇ ਹੋ ਪਰ ਹਮ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਤੋ ਸਮਝ ਕਰ ਹਮਨੇ ਪਾਪ ਕੀਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਸਤਵ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਸਮਝ ਲਓ ਅਗਿਆਨ ਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕ੍ਰਿਆ ਕਾ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਕ੍ਰਿਆ ਕਾ। ਤੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਸੇ ਤੋ ਬਚੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਰਕ ਉਸਕੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਮੈਂ ਸਮਝ ਮੈਂ ਜਾਓ ਤੁਮ ਔਰ ਉਸਸੇ ਕਹੋਗੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਤੋ ਕਦਾਚਿਤ ਵੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੁਮੇ, ਤੋ ਤੁਮੇ ਲਗਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਦੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਨਾ ਜਾਤਾ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਫ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਆਪਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਂ ਜਗਾਨੇ ਲਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਅਭੀ ਤੋ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਭੀ ਉਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਜ 15 ਮਿੰਟ ਆਜ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਸੇ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੋ ਹਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਯਦਿ ਤੁਮੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਔਰ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਔਰ ਜਿਸੇ ਪਤਾ ਥਾ ਵੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੋ ਪਤਾ ਥਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸੇ ਇੱਕ ਚਾਂਟਾ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਜਿਸੇ ਪਤਾ ਥਾ ਵੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸੇ ਦੋ ਚਾਂਟੇ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ? ਜਬ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਗਈ ਥੀ ਤਬ ਤੁਮ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਤਬ ਤੁਮ ਪ੍ਰਵਚਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਨਾ। ਅਪਰਾਧ ਡਬਲ ਹੁਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਆ? ਯਾਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕੋ ਹਮ ਗਲਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੇ ਕ੍ਰਿਆ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਸਤੂ ਕੇ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਸੇ ਆਪ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੁਝੇ ਤੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ कि अग्नि पे हाथ रखने से जल जाते हैं, तो आप अग्नि तुम्हें जलाने से छोड़ देगी? बोले वस्तु के स्वरूप में जाके विचार करो ना। बोले अब छोटा बच्चा है, अजान है, वो समझता नहीं है कुछ, इसलिए वो यदि अग्नि को छू लेवे तो वो जलेगा कि नहीं जलेगा? जंगल में जाओ, शेर के सामने चले जाओगे, मुझे ये पता नहीं था कि शेर खा जाएगा, तो वो शेर तुम्हें इस हिसाब से छोड़ देगा? ये तो बहुत कम लोग हैं जिन्हें समझदार मानते हो आपके गुरु जी ने हैं, और छोड़ दिया तो उल्टी आपकी मान्यता पुष्ट हो गई। वस्तु के स्वरूप में कहीं अज्ञान के लिए माफी की गुंजाइश नहीं है। क्या अज्ञान के लिए माफी की गुंजाइश नहीं है? लेकिन हमारे भारत के कानून ने भी थोड़ी सी गुंजाइश दे दी, और हमारे दिमाग में वो गहराई से अंदर में बातें प्रवेश कर गई कि जिसने पता नहीं है। मैं पूछता हूं, ये गरीब लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, तो इनको कोई माफी है? यदि माफी है तो फिर वे इतने गरीब क्यों है? उन्हें रोटियों की व्यवस्था नहीं होती है। यदि आपके नंबर अच्छे नहीं आए तो सारी जिंदगी भरी क्लर्की करनी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गए तो आप ऑफिसर बन जाएंगे, कहां वस्तु के स्वरूप में माफी कहां मिली आपको? और नहीं पढ़े तो अपनी खेती करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी। ये भोजनालय में अपना जो लड़के करते हैं वो तुमसे ज्यादा अच्छे सुंदर घूरे भूरे एकदम है या नहीं? क्या कमी है उन्हें बोलो? पहचान सकते हो तुम कि जो विद्यार्थी है वह विद्यार्थी नहीं है? ये क्यों रोटियां ठोक रहे थे, तुम्हारे क्यों बर्तन मल रहे, ये क्यों यहां झाड़ू पोंछा लगा रहे? यदि अज्ञान माफ होता होता है तो उनको ये इस बात की माफी मिल जानी चाहिए थी ना। जैसे मान लो दूसरी जगह के हैं, सिर्फ इसलिए थोड़ी उनका अपराध है। आपकी भी वही स्थिति रही, अपने हिंदी प्रांत से इधर से आए, बुंदेलखंड से आए, महाराष्ट्र से आए, यदि उसी योग्यता के लोग तो उन्हें भी तो आप यहाँ पर वही काम देंगे ना, क्या झाड़ू पोछा लगाने का, वही भोजन बनाने का। तो स्पष्ट है कि इस लोक में भी आप समझते हो कि हमें माफी मिल जाएगी। सिर्फ उस अध्यापक ने एक और गलती की कि आपके दिमाग के इस बात को मजबूत कर दिया कि आपने ये कह दिया कि हमने गलती की, हमें पता नहीं था, तो उसने आज छोड़ दिया। मेरा मतलब समझिए ना, उसने पाप किया। क्या पाप किया? कि आपके उस अज्ञान को और मजबूत कर दिया कि अज्ञान कोई अपराध नहीं है। अब हमेशा आप जान करके भी ये कहोगे कि हम तो जानते नहीं है, कहोगे कि नहीं कहोगे? इसलिए हमको ये बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि अज्ञान, और यहां पर उनका दोनों में एक सी ही पोजीशन है, ज्ञानी जानते हुए भी अग्नि को छुएगा तो जलेगा, और अज्ञानी बिना जाने छुएगा तो जलेगा। अग्नि पर हाथ रखोगे तो जले बिना नहीं रहोगे। पर ये बात इन चार गाथाओं में कही गई है कि ज्ञानी अज्ञानी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परद्रव्य का कर्ता ज्ञानी भी नहीं है और अज्ञानी भी नहीं है। अब जो गाथाओं में लिखा है, गाथाओं का अर्थ अपने तरफ पढ़ लेते हैं। ज्ञानी अनेक प्रकार से पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। ज्ञानी अनेक प्रकार से अपने परिणामों को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य के पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उन्हें ग्रहण नहीं करता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता। ज्ञानी पुद्गल कर्म के अनंत फल को जानते हुए भी परमार्थ से परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। अब इसमें चार गाथाओं में क्या बदला है और क्या नहीं बदला है, इस पर पहले ध्यान दो। ऊपर की पंक्ति चारों में एक ही है, कौन सी? न भी परणमदी न गिन्नदी न उपपद्यदी पर दब्ब पज्जाए। कोई भी द्रव्य पर द्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। तो ये तीन बातें हैं जो चार दफे रिपीट होंगी। क्या? यानी काम तीन तरह के होते हैं, परिणमित होना, ग्रहण करना और उत्पन्न होना। अभी इनमें क्या है, जैसे कि किसान ने में गेहूं पैदा किए खेत में, तो डाले थे 100 दाने और हुए 1000 दाने पैदा, तो हम कहेंगे कि वो 900 दाने उसने पैदा किए। 100 तो समझो 100 तो थे ही, वैसे तो पैदा ही 1000 ही हुए हैं, लेकिन कोई कहेगा 100 तो थे ही, लेकिन उसने 900 तो नए पैदा किए ना, है? तो एक तो ये काम, और दूसरा ये काम कि जब वो गेहूं हो गए तो एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी ने उसके बिस्कुट बनाए, तो उसे भी हम काम तो मानते हैं। वो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी ने 1 किलो गेहूं के बिस्कुट बनाए तो वे 1.25 किलो नहीं बने, वो गेहूं तो उतना ही रहे ना, समझे ना। तो इसलिए कहते हैं उसने नया कुछ भी उत्पन्न नहीं किया, उसने सिर्फ परिणमन किया, चेंज कर दिया, उसको भी लोग में काम करते हैं। और एक व्यापारी है कि जिन्हें ना बिस्कुट बनाए ना गेहूं बनाए, वो तो बने बनाए बिस्कुट के पैकेट खरीद के ले आया और अपने बेचे, तो उसको व्यापार को भी तो एक काम कहते हैं ना। तो तीन तरह के काम हो गए, परिणमाने वाले और पैदा करने वाले और प्राप्त करने वाले, जो अकेला प्राप्त करते हैं उसे भी काम जगत में माना जाता है। कुछ नहीं किया, ये रूमाल मेरे से तुम ले गए, मैं मान लो घर छोड़ा रहा, मैंने कहा ये रूमाल लाना, तो तुमने वहां से आके लाए, तो ये रूमाल के तुमने नया बनाया है क्या, इसमें कुछ चेंज किया है क्या, फिर वहां से लाकर यहां दे दिया, तो इसे भी काम कहते हैं क्या? नहीं। एक आदमी दिन भर ऐसे ही काम करता रहा तो उसकी तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ये भी जगत में एक काम कहलाता है। तो कहते हैं कि ये काम तीन प्रकार के हैं, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में को ना तो पैदा करता है, ना उसमें परिणमन करता है और ना उसे प्राप्त करता है, तो उसका कर्ता कैसे हो गया? इतनी सी बात है, तीन तरह के काम है ना, सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। इनको अमृतचंद्राचार्य ने नीचे टीका में प्राप्य विकार्य और प्राप्य विकार्य निर्वर्त्य ऐसे तीन नाम दिए हैं। तो प्राप्य माने वो प्राप्त करना, विकार्य माने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देना, और निर्वृत्त माने उसे पैदा करना। तो तीन तरह के काम हैं, इस तीनों तरह के काम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के नहीं करता। तो ये इसका गाथा का बस इतना मेन सारांश है, इतने में बात पूरी हो गई कि तीनों प्रकार के काम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता। अब देखो हम जगत में कोई ऐसा लगता है, जैसे आजकल बहुत ये होता है कि व्यापारी लुटेरे हैं, बदमाश हैं, इनके विरुद्ध वातावरण बनता है, उद्योगपतियों के विरुद्ध भी बनता है, और बेचारा किसान वो तो पैदा करता है और वो भूखों मरता है। आज से 100 वर्ष पुराना साहित्य उठाकर देखो, हिंदी साहित्य, तो आपको इसके विरुद्ध सारा साहित्य यही यही बात लिखी होगी उसमें कि इनने किया क्या, एक दाना तो पैदा किया नहीं, क्या? और बाजार में अभी मुझे मालूम नहीं भाव, मोटे तौर से कहता हूं 20 रुपए किलो का गेहूं खरीदा और बस उसमें कुछ नहीं किया और 200 रुपए किलो बिस्कुट बेच दे, कितना कितना अन्याय है। डबल रोटी है खत्म, वो उसमें कुछ नहीं है, पानी डाला था पानी उड़ गया तो गेहूं ही रह गया बस अकेले, और अकेला सेक दिया बस, और उसके वो 20 रुपए का किलो 100 रुपए किलो हो गई। तो कितना कितना लुटेरे हैं ये, क्या? और व्यापारी देखो इतनी चीनी भाव लाया, भाव बेच रहा है, लुटे रहा है, ये है वो है वो है। अब मैं व्यापारियों की तरफ से आपको एक बात कहता हूं, बहुत पुरानी बात है, इस फिरोजाबाद में जो मंदिर बना है ना जैन नगर का, वो पीछे वाला मंदिर तो बाद में हुई प्रतिष्ठा, तब मेन मंदिर की प्रतिष्ठा जब हुई थी तब हम उसमें गए थे, वो सन 50 के लगभग की बात होगी, 50 तो नहीं मैं 55 56, हाँ अशोकनगर से गए थे तो 59-60 की बात होगी क्या। तो वहां पर परिषद का अधिवेशन हुआ था, तो पहले साहू जी उसके अध्यक्ष थे और बाद में कोई राजेंद्र कुमार उद्योगपति थे वो उसके अध्यक्ष बने थे, वो रिटायर्ड हुए थे। तो उसका भाषण जो हुआ था और मैंने उसे सुना था, वो बाद में आपको बताना चाहता हूं कि उसने कहा कि देखो मैं जैनियों के बच्चों से ये कहना चाहता हूं इतर कि व्यापार का जमाना गया, खेती का जमाना तो बहुत पहले चला गया था, खेती तो जैनियों को नहीं करना चाहिए, हमारे उत्तर भारत में तो एक बहुत कहते हैं जो लोग करते हैं उन्हें कोई अच्छा नहीं मानता है ना। अब व्यापार का जमाना भी नहीं रहा, तो उसने क्या तर्क दिया था कि बाजार में एक चीज उसका भाव माने 5 रुपए है ना, तो 5 रुपए के तुम 5.25 रुपए लोगे तो ये सारी दुनिया लुटेरा कहेंगी, जब 5 रुपए के 5.25 रुपए में क्या 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 हो गया, वो तो आने ले जाने में खर्चा इतना हो जाता है। कि उन्होंने उदाहरण दिया था सनलाइट साबुन का दिया था कि सनलाइट साबुन का एक बाजार में रेट नक्की है, तो वो जो बेचने वाला है वो सनलाइट साबुन यदि आपको 5 रुपए में मिलती है तो उसे 5 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे कम में मिलती है। जैसी ऐसी बिक्री की चीजें होती है ना उसमें बहुत कम मुनाफा होता है, इसलिए वो आपको समझाता है कि सनलाइट में कुछ नहीं रखा है, ये तो लूटते हैं, तुम तो ये साबुन ले जाओ ये 4 रुपए की है बहुत बढ़िया है, वो उसे 2 रुपए में मिलती है। यानी इसमें ग्राहक को स्पष्ट दिखता है कि तुमने कितना कमाया, इसलिए वो तुम्हें कमाने नहीं देना चाहता। और आप 2 रुपए किलो का गेहूं खरीदो उसे उधार दिया और बिस्कुट बनाओ और 100 रुपए किलो बेचो, उस वक्त 2 रुपए किलो गेहूं ना होगा और 100 रुपए किलो बेचो तो तुमको कोई कुछ कहने वाला नहीं, मेरे पैकेट का डब्बा का इस पैकेट का कितने पैसे है बस वो देगा फटाफट तुम ले लेना। इसलिए कमाई उद्योग में है व्यापार में नहीं। यानी उसने ये बताया कि उत्पाद नामक कर्म वो बेकार है और प्राप्त नामक कर्म बेकार है, सिर्फ प्रणमित कराने वाला थोड़ा चेंज कर दो बस, उसी को उसी रूप में नहीं। मालूम है आजकल क्या होता है, ग्लूकोज आता है बाजार से इकट्ठा, ग्लूकोज आता है 100 किलो का भाव में बिक के जैसे चीनी बिकती है ग्लूकोज भी बिकता है, फिर हम ला करके और उसकी रीपैकिंग करते हैं, 200-200 ग्राम के डब्बे बाजार में बना देते हैं और डब्बे में भर के पैक कर देते हैं। अब वो 200 ग्राम का जो डब्बा आप बेच रहे हैं ना वो एकदम डबल भाव में बिकता है। उसने क्या किया, उसने तो कुछ नहीं किया उस ग्लूकोज में, सिर्फ रीपैकिंग की है और वो लगा लगू करके ऊपर से जरा एकदम बढ़िया बना करके और डबल भाव ले लो। इस जगत की मनोवृत्ति बताई। आज भी आप देख लीजिए कहते बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, सब चिल्लाते हैं कि नहीं, दालें बहुत महंगी हो गई, ये सब महंगी हो गई। क्या महंगी हो गई? वही चने की दाल के बने सेव बाजार के पैकेट में ऐसा डिब्बा आता ना आजकल, जिसमें हवा भरी होती है, मुझे 500 रुपए किलो के तुम कब से खरीद रहे हो और खा रहे हो? 100 ग्राम होते हैं उसमें और 35 रुपया, 40 रुपया। ए बच्चे दौड़ दौड़ के बढ़िया पेड़ में देख के लाके खाते हैं। यानी ये महामंत्र ने जैनियों के बच्चों को वहां दिया था, वो मुझे आज तक याद है। वो स्थान भी, वो कैसे कपड़े पहने थे, कैसे बोले थे, कैसी सभा थी, कैसे बैठे थे हम लोग, वो सारी उसके परिकर के साथ में। यदि मैं चित्रकार होता आगे नाटक करने वाला तो बढ़िया नाटक करके आपको बता सकता था कि कैसा वो सभा रही होगी। ज्ञान में गए तो सब है ना। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बात बताने के लिए कह रहा हूं कि काम तीन तरह के होते हैं, मुझे सिर्फ ये समझाना। जो बिल्कुल किसी काम का काम नहीं है आज जगत में, उसकी सबसे ज्यादा कीमत हो गई। काम करने वाले की कीमत नहीं है, बिना काम का काम करने वाले की कीमत है। मैंने कहा था आप बाजार से गेहूं लाइए, चावल लाइए, अपने घर में रखिए, साल भर तक एक्स्ट्रा आईडी नहीं होती उसकी। अब उसे बना करके एक्सपायरी शुरू हो जाती है। आपके घर में भी आज रोटी बनाई तो कल वह एक्सपायरी हो गई ना, कल नहीं खाते ना बासी रोटी आपको परसें। एक दिन भोजनालय में बासी रोटी परसे, देखो तुम कितना हल्ला गुल्ला करते हो, और 15 दिन का बासा खाते हो जाके 10 गुना भाव ला करके। पुराने जमाने में तल देते थे, अब आजकल जो हार्ट की बीमारियां हो गई ना, चिकनाई नहीं खाना तो उसमें भी वो अब तलना भी खत्म हो गया। क्या बोलते उसे दादा? रोस्टेड बस उनने सेक दिया और उसमें वो घी भी नहीं लगाया, तेल भी नहीं लगाया, और वो उसका भाव 10 गुना हो गया। वो रोस्टेड बाजार से मूंग बनाओ, क्या भाव आती है कि नहीं है? मैंने उसको चेंज करने में थोड़ी कीमती चीज लग जाती थी पहले, अब वो भी नहीं है। तो ये जो बेकारी, उसका नाम अमरचंद ने रखा बेकारी। क्या किया तुमने उसमें? बेकार पैदा कर दिया। मैंने ओरिजिनल रूप में थी उसको तुमने बस चेंज कर दिया और दूसरा विकृत कर दिया। बेकार माने विकृत, विकृति पैदा की। मैं तुमने उसका असली सेब खत्म करके विकार पैदा किया, तो विकार की इतनी कीमत। ये उन्होंने उपदेश दिया था जैनियों के बच्चों को। है? हम 2 रुपए का कपास ऐसा बोला था और सीधा लाते हैं और बराबर उसकी क्या नाम धोती आती है ना, बहुत बढ़िया परम सुख के रूप में 200 रुपए किलो में बेचते हैं। 2 रुपए किलो का कपास, उसमें उस कपास के अलावा क्या है मुझे बताओ। और हम लिखते हैं प्योर प्योर कॉटन। अब देखिए किसान ने तो वो बिल्कुल जीरो में से पैदा किया कपास इतनी मेहनत करके खेत में डाल के 4 महीने में जीरो में से पैदा किया है कपास किसान ने। उसको 2 रुपए किलो के भाव मिलते हैं बेचारा, वो भूख भी मरता रहता है, पर ये उसे 200 रुपए किलो बेचते हैं। ये सारे उदाहरण न दिए थे इसलिए क्यों कि अब व्यापार छोड़ो उद्योग करो। वही परम सुख का होती जोड़ा, यदि वो 100 रुपए का आता है तुम 105 लोगे तो तुम लुटेरा कहेगा, तुम्हें लुटेरा। वहां पर दोनों बाजार में 100 रुपए में मिलती है, ये बाबू ने 105 ले लिए था, बोलो क्या करें 105 ले लिए। क्या होता क्या नहीं होता? अब देखो तीन चीजें हो गई, परिणमन ग्रहण और उत्पन्न करना। तो प्रणमन इसका मतलब समझ लीजिए आप विकारी, और ग्रहण माने वो प्राप्त, और पद्य माने निर्वृत्ति। तीन तरह के कार्य हो गए, प्राप्त, विकारी और निर्वृत्ति। कार्य कार्य को तीनों के नाम दिए टीका में, नीचे देखो पढ़ते हैं। प्राप्त विकार निर्वृत्त रूप व्याप्त लक्षण वाले पुद्गल के परिणाम रूप कर्म पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप प्रणमन करता हुआ, उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस पुद्गल परिणाम को करता है। इनका वजन तो क्या है कि पुद्गल में चाहे विकारी कार्य हो, चाहे उत्पन्न होने वाला कार्य हो, और चाहे प्राप्त करने वाला कार्य हो, वो कहते हैं सब पुद्गल का पुद्गल में ही होता है। अपन को तो प्राप्त, विकारी और निर्वृत्त एक काम तीन प्रकार के होते हैं, उनको समझाना इष्ट है, इसलिए अपन ने इस तरह भेद करके बताई। उनको आचार्य को इससे मतलब नहीं है, वो तो समझते तुम समझते हो वक्त, वो तो ये कहते हैं कि पुद्गल ने पुद्गल को ही प्राप्त किया। कोई व्यापारी पुद्गल को कभी प्राप्त करता ही नहीं है, पुद्गल ने पुद्गल में ही प्रणमन किया और पुद्गल ही उत्पन्न हुआ। तो कहते गेहूं का दाना, वो ही गेहूं का दाना ही अपने आप पैदा हुआ है। गेहूं के दाने के बिस्कुट भी गेहूं के दाने नहीं बनाए हैं, तो अपने आप ही बने हैं क्यों? और गेहूं के दाने को व्यापारी ने प्राप्त किया है, वो गेहूं के दाने को गेहूं ने ही प्राप्त किया, क्योंकि गेहूं पर उसका उसमें ही रहा ना। यदि तुम्हें गेहूं पर प्राप्त हो गया होता तो तुम गेहूं हो जाती, कैसे नहीं? तुम्हें तो मैंने कपड़ा प्राप्त किया तो तुम कपड़ा हो जाते। कपड़ा पर तुम्हें प्राप्त हो गया होता तो तुम्हें कपड़ा हो जाना चाहिए था। यदि रुई कपड़े रूप बनी, यदि तुम कपड़े रूप बने होते तो तुम्हें तुम्हारा ताना वाना उसमें लगा होना चाहिए था। वो तो ये कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को, ये तीन प्रकार के जो काम हैं ये कोई नहीं करता। ये जो बात हम कहते हैं तो लोगों को अटपटी लगती है, हंसी आती है कि क्या बच्चा, हम गेहूं को प्राप्त करें तो हम गेहूं हो जाए। तो गेहूं बने को प्राप्त होगे तभी तो गेहूं को प्राप्त करोगे ना। ओके समझे? ये समय सार की भाषा, ये समय सार का जो प्रतिपाद्य है ये अपने आप में कितना कठिन है समझ लो, और समझ में आ जाए तो इससे सरल कुछ दूसरा कुछ है नहीं। अब ये पुद्गल द्रव्य की बात करता है ना, वो आपका उन्होंने कहा ना पुद्गल द्रव्य किसी को नहीं जानता है, नहीं जानता हुआ पुद्गल पुद्गलपने पुद्गल ही पुद्गलपने को प्राप्त करता है, पुद्गल ही पुद्गलपने के रूप में परिणमित होता है, और पुद्गल ही पुद्गलपने में उत्पन्न होता है। तीनों तरह के कार्य पुद्गल के पुद्गल में होते हैं और जीव के जीव में होते हैं। अब ये तो मोटी मोटी बात हुई, अब इसमें बारीक बात क्या निकलेगी कि एक पुद्गल का परमाणु वो दूसरे पुद्गल के परमाणु का कुछ नहीं करता। हम तो ये कहते पुद्गल जीव कुछ नहीं करता, ये तो दो विजातीय द्रव्यों की बात हुई, लेकिन सजातीय द्रव्यों में भी तो ऐसा है ना। क्योंकि हमारी असली समस्या तो यही है कि दो जीव द्रव्य, एक जीव द्रव्य का दूसरा द्रव्य कुछ नहीं करता। तो हमने ये मान लिया है कि हमारा भला बुरा तुम करने वाले हो, इसलिए अनंत राग द्वेष होते हैं, हमें वो राग द्वेष मिटाना है ना। तो वो लोक में क्या होता है कि जब कोई बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, समझे ना, तो जिंदगी भर हमने समझाते रहे कि कोई किसी को पैदा नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता, बढ़ाता नहीं है, कुछ नहीं करता, और वो पढ़ाता नहीं है, लिखाता नहीं है, तैयार नहीं करता है। वो बच्चा स्वयं ही पैदा हुआ है, स्वयं ही बड़ा हुआ है, स्वयं ही विद्वान बना है, ये सब स्वयं ही हुआ है। यदि वो बाप की वो विद्वान बना सकता होता तो बाप विद्वान बन जाता पहले, ये समझाते ना अभी धर्म में। अब एक मिनट में तुम अपने पिताजी की सेवा नहीं करोगे, आज्ञा नहीं मानोगे, क्यों? पिताजी जहां कहते हैं वहां शादी नहीं करोगे, अपने मन की लड़की से शादी करना चाहोगे, और पिताजी तुम्हें पकड़ के हमारे पास लाएंगे तो हम क्या कहेंगे, क्या समझाएंगे? देखो बेटा, इनने तुम्हारे क्या किया, 9 महीना पेट में रखा, पाला पोसा, कितने कितने उपकार इनने किए, रूखा खाते रहे, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आज तुम्हें इसके काबिल बनाया कि तुम स्वयं निर्णय करने की पोजीशन में आ गए, और आज तुम उनकी उपेक्षा करते हो। तो अभी जगत का स्वरूप और वस्तु का स्वरूप कितना परस्पर विरुद्ध है, हैं? वो हाथ जोड़ के हमसे कहेगा, दादा आपने 5 साल तक तो हमको ये पढ़ाया कि कोई किसी का कुछ नहीं करता, और आज कितने हमारा कितना उपकार किया, ये गिना रहे हो? बोलो। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि आप दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम करने का अपने हाथ में लिया है आपने। इतना कठिन है कि चांद पे जाना उतना कठिन नहीं है, मंगल पे जाना उतना कठिन नहीं है, वो वैज्ञानिकों का काम कोई कठिन मठन नहीं है। आपने एक तो समझाने का काम लिया, और जगत जो मानता है, जगत जो समझाता है, उससे एकदम विरुद्ध समझाने का काम किया है। क्यों? नहीं तो हमारे पंडितों ने क्या कह दिया, परस्परो गृह जीवा नाम, देखो साफ साफ लिखा है, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है, खुद का जीव का उपकार करता है, इसलिए उसका उपकार मानना चाहिए। क्यों? तत्वासूत पढ़ा पढ़ा करके हमारा कैसा माथा खराब किया है? उपकार शब्द का अर्थ ही नहीं बताया। उपकार माने भलाई, ये कौन सी दिख, कहां से निकाल रहा है तुम? तो उपकार माने क्या होता है, एक होता है कार्य और एक होता है उपकार्य। माने एक होते हैं राष्ट्रपति और एक होते हैं उपराष्ट्रपति। क्यों? एक होता है नगर और एक होता है उपनगर। इसमें भलाई का कहां अर्थ हो गया? जयपुर का बापू नगर उपनगर है, तो बापू नगर ने जयपुर की भलाई की कि जयपुर ने बापू नगर की भलाई की? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति की भलाई की कि उसे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, भलाई का वो भलाई का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे दो होते हैं, एक कारक और एक उपकारक। एक कारक माने करने वाला, 6 कारक 8 कारक, तो वो कहते हैं जैन धर्म के, वो तो अपने अपने में ही होते हैं। तो हम अपने कारक हैं और पर पदार्थ हमारे उपकारक हैं। उपकारक है माने समझना, हमने भला कारक से उपकारक को बड़ा मान लिया। तो कारक होता है उपादान और उपकारक होता है निमित्त, जो कार्य में कुछ नहीं करे। क्यों साहब आप कहां रहते हो? बापू नगर में। लेकिन लिखते तो जयपुर वाले, जयपुर वाले, अरे जयपुर बापू नगर जयपुर का उपनगर है ना। क्यों? तो उपनगर है माने क्या? उपमाने होता है समीप, तो जयपुर के समीप है, नगर के समीप है, उसे बोलते हैं उपनगर। वन और उपवन है ना, माने असली वन तो वो है। ये असली वन कहां रहा, ये जंगल कहां रहा? इसे तो हमने कांट छांट के अपने हिसाब से अपने नगर जैसे उससे भी बढ़िया बना लिया है। तो ये उपवन, तो महान कौन है? वन के उपवन। तो ऐसा हमने उपकारक उपकारक अर्थ कर करके और उस दिमाग में निमित्त को ही बिल्कुल बलवान सिद्ध कर दिया है। अब हम आपको जगत को ये समझाना है कि कोई किसी का उपकारक नहीं होता है, है? तो इसलिए यहां ये कहते हैं कि उन्होंने 3 तरह के काम, और अब वो हालांकि 75 गाथा में उसके पहले भी कह दिए थे ना कि वो करता नहीं है, कार्य का करता नहीं है, कम्मे नो कम्मे कर्म का नो कर्म का, इनका ये भगवान आत्मा करता नहीं है, मात्र जानता है। बात तो हो गई पूरी। अब यहाँ कहते हैं वो करता नहीं है, तो काम तो तीन प्रकार के होते हैं, वो तीन प्रकार के में कौन सा नहीं करता है, कि तीनों ही नहीं करता है क्या? तो फिर वो कहा गया जानने वाला जीव नहीं करता है, तो नहीं जानने वाला पुद्गल करता होगा या नहीं? नहीं जानने वाला पुद्गल भी नहीं करता, वो जानने वाला जीव भी नहीं करता, वो जानने वाला ज्ञानी जीव भी नहीं करता और अज्ञानी जीव भी नहीं करता, पर द्रव्य का करता कोई नहीं है। इतनी बात ही इन चार गाथाओं में समझाई गई है, टीका अपन कल पढ़ लेंगे विस्तार से।